स्टार्ट। गुड इवनिंग बेटा सबको।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग
बेटा। गुड इवनिंग
सर।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग
सर।
बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। काफी रेनी गुड इवनिंग है, मगर गुड इवनिंग है। गुड ही बताया गया, आप बैठ कभी बताया ही नहीं गया हम लोग को।
तो
खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा, सब कोई खुश रहो। आज तो 99.9% बच्चे ऑनलाइन हैं। तो चलो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन ही ज़्यादातर बच्चे हैं ही हैं, तो उसी के थ्रू एड्रेस करते हुए दो दिन की हम लोग की और क्लास बाकी है MPAC की, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट 1961। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास अगेन। टुडे इज 6th January 2022। टाइम इज सेम एज 4:55 अप्रॉक्स इवनिंग इन लखनऊ। आई एम अमित सर, विथ मी अंकित सर, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, फेमस इंस्टीट्यूट, रेनाउंड इंस्टीट्यूट, तबाही मचाने वाला इंस्टीट्यूट, अमित लॉ इंस्टीट्यूट। एंड दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ मध्य प्रदेश अकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट 1961। ये स्पेशल लेक्चर है, 6 lectures की सीरीज है। This is an special lecture for Madhya Pradesh, the students who are aspiring for getting a job, the students who are hunger for job, जो भूखे हैं जॉब के लिए, प्यासे हैं। ये बेटा इधर आओ, बस एक मिनट बेटा, वो ऑन करना आता है ना, अलाउ करना। हाँ बेटा तुम ही करते रहो, देखो अलाउ कर दो, कोई बच्चा है। हाँ बस खड़े रहना तुम आराम से, एक बच्चा है क्लास में, तो हमने कहा उसी की हेल्प ली जाए। तो ये स्पेशल क्लासेस चल रही हैं मध्य प्रदेश के लिए, 6 class की सीरीज है, 3 MPLRC हो गई और 3 हम लोगों ने डिस्कस किया था MPAC, आप सबने बोला था कि, और 10 जनवरी से हम लोग को IP स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये सेकेंड लेक्चर है, दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ मध्य प्रदेश अकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट। इसमें हम लोगों ने कल देख रहे थे कि टोटल जो इसमें सेक्शंस हैं वो 51 है, टोटल सेक्शन 51 है, चैप्टर हैं 7 और इन्फोर्समेंट डेट, कमेंसमेंट डेट है जो MPAC का, MPAC मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट का, बैठ जाओ बेटा, थैंक यू, MPAC का वो है 30 दिसंबर 1961 इसका इन्फोर्समेंट डेट है, जो हम सब जानते हैं इम्पॉर्टेंट डेट है। इसके पहले MPLRC पढ़े थे तो उसकी थी 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। तो हम लोग सबकी डेट हम सबको याद रखना है, अपना नोट्स बनाते चलना है। ये बड़ा स्पेशल टाइम है कि हम सब अपना एक एडिशनल स्टेट की प्रिपरेशन इसी बीच में कर डालें। तो हम लोग का मध्य प्रदेश चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मध्य प्रदेश का एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, ये वही है जो उत्तर प्रदेश का रेंट कंट्रोल एक्ट था या दिल्ली का रेंट कंट्रोल एक्ट है। यानी टू रेगुलेट द टिनेंसी, टिनेंट को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे उसको निकाला जाए और कितना उससे किराया लिया जाए, इससे ज्यादा MPAC डील नहीं करता है। यानी किसको टिनेंट बनाना है, अलॉटमेंट का प्रोविजन MPAC में नहीं है, जबकि वो हमारे उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट में था। किसको अलॉट किया जाएगा वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ का डिसाइड करता था, मगर मध्य प्रदेश के इस एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में ये चीज रखी गई कि ये यहां फिक्स नहीं है, यहां पर आप अपनी स्वीट विल से किसी को भी टीनेंट बना सकते हैं, बस टीनेंट को रेगुलेट करना है, टीनेंसी को, उसका जो भी रेंट है उसको रेगुलेट करना है, कितना होगा वो डिसाइड करना है, और इविक्शन का प्रोविजन। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसी को लेके, और जो हम लोग का टॉपिक था कल का, वो पहले हम लोगों ने सेक्शन 2 पढ़ा था। सेक्शन 2 में डिफिनीशंस थी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी अकोमोडेशन और दूसरी फैमिली की, क्योंकि फैमिली में एक बड़ी परिभाषा यहाँ दी गई है, बड़ा डिफिनीशन दिया गया है और एग्जास्टिव है, उसमें काफ़ी लोगों को कवर किया है। जिसको कवर नहीं किया गया है वो मैरिड डॉटर है, ग्रैंडसन है जो साथ नहीं रह रहा हो, इट्सेट्रा। कल इस पे डिस्कशन हो चुका है। फिर किस अकोमोडेशन पे ये एक्ट नहीं लगेगा, तो जो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक्ट है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का है, उस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि रेंट से रिलेटेड चैप्टर आया था और उसी को हम लोगों ने कल फिनिश किया था। रेंट में व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट, हु विल डिसाइड दिस स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट हम लोगों ने पढ़ा कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, कौन डिसाइड करता है, इंक्रीज कैसे होगा, सेक्शन 7-8 फिर हम लोगों ने सब पढ़ा था। और अगर ये डिसाइड किया कि 1961 के पहले वाले रिपील एक्ट से, जो उसके पहले एक्ट चल रहा था 1955 का, अगर उससे गवर्न हो रहा है, यानी 1948 के पहले या बाद का अगर कोई मकान है, तो 1961 के बाद उसका स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट की कल्पना ही 1961 में की गई मानक भाड़े की। तो पहले जो रेंट चलता था वो म्यूनिसिपैलिटी का एसेस्ड रेंट था, असेसमेंट असेस्ड बाय म्यूनिसिपैलिटी। तो कहा गया उस रेंट में आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीनेंट है तो 35% और ऑर्डिनरी टीनेंट है तो 70% इन्हेंस कर दीजिए, वही यहां पर स्टैंडर्ड रेंट होगा। और स्टैंडर्ड रेंट को हमेशा 12 मंथ के लिए डिसाइड किया जाता है। स्टैंडर्ड रेंट इज डिसाइडेड एंड फिक्स्ड बाय आरसीए, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। एंड हु इज आरसीए, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी? इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 28 ऑफ रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की बात की गई है ऑफ दिस MPAC, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एनी पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर टू बी RCA, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। इतना कल हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सेस आप नहीं वसूलेंगे, जो भी स्टैंडर्ड रेंट है उसके ऊपर अगर आपने एग्रीमेंट भी किया है तो रिकवरेबल नहीं होगा, ये सब हम लोगों ने कल देखा। आज का जो टॉपिक है, जो आज का होगा, वो इविक्शन से रिलेटेड होगा, कि किसी किराएदार को, टीनेंट को अपने लोग कैसे निकालने। ऐसा तो है नहीं कि हम सब पढ़े होंगे प्रोविजन, हम सबको लॉ थोड़ा बहुत मालूम है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू टेक लॉ इन टू हिज हैंड, वी आर लॉ अबाइडिंग पर्सन एंड नॉट लॉ अवॉइडिंग। यानी हम ऐसा नहीं किराएदार का समय समाप्त हो जाए, हम जाए उसका कॉलर पकड़ के सामान रोड पे फेंक दें, ये गलत होगा, ये इलीगल एक्टिविटी होगी। और जानते हैं फिर ऐसा टीनेंट एक तो क्रिमिनल एक्शन भी करेगा और सिविल में सेक्शन 6 SRA में रिस्टोर करा देगा पोजिशन। यानी उसको निकालने का प्रॉपर ढंग क्या है, तो एक तो उसकी फॉल्ट ढूंढी जाए, उसकी क्या दिक्कत है, क्यों उसको निकालना है, कोर्ट पूछती है। और फिर सेक्शन 12 में वी हैव टू फाइल, अगर इफ इट इज द केस ऑफ मध्य प्रदेश देन वी हैव टू फाइल अ सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टीनेंट, इविक्शन ऑफ टीनेंट ऑन वन ऑफ द ग्राउंड्स एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 फ्रॉम A2, कहाँ तक है A2, देखिए ए से लेकर कितने, हाँ बेटा
बी तक है शायद सर,
ज्यादा है
ओ तक है,
पी 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 ठीक है, फ्रॉम A to P, यानी करीब 14 ग्राउंड होंगे। इस ग्राउंड पे हम लोग को सिविल सूट में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सबको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, सेक्शन 12 के मामले में हमारा जो सूट आएगा वो सिविल सूट का होगा, इविक्शन सूट होगा सिविल कोर्ट में। और जब अभी आज हम लोग पढ़ेंगे फर्दर बोनाफाइड ग्राउंड पे, तो अभी बताएंगे कि अगर सेक्शन 13J के हिसाब से अगर वो मकान किसी गवर्नमेंट एम्प्लाई का है, गवर्नमेंट सर्वेंट का है जो रिटायर हो गया है या उसकी पोस्टिंग अब उस शहर में हो गई, वो चाहता अपना मकान खुद के लिए यूज़ करना, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न दिया है 23A एंड ऑनवर्ड्स। मगर वो केवल तब लागू होगा जब स्पेशल लैंडलॉर्ड होंगे। स्पेशल लैंडलॉर्ड का मतलब द पर्सन बिलोंग्स टू गवर्नमेंट साइट। तो आज हम लोग इसी को इविक्शन के ग्राउंड्स, उसके कंडीशंस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद अ चैप्टर
थर्ड।
हाँ बताना, स्टार्ट कर दीजिए।
चैप्टर थर्ड, कंट्रोल ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट्स, 11A। सर्टेन प्रोविजंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर सो फार एज दे रिलेट टू मैटर स्पेशली प्रोवाइडेड इन चैप्टर थर्ड ए शैल नॉट अप्लाई टू द लैंडलॉर्ड डिफाइंड इन सेक्शन 23J।
जी, एक बार यहाँ 11A जरूर देखना जरूरी है। कह रहा है कि कुछ स्पेशल केस हैं जो 13J वाले हैं, सबको 23J आप भी निकाल लो बेटा, 23J 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 जो है उसमें देखिए कह रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड वो है जो 23J में प्रोवाइडेड है, तब उसका यहां सूट नहीं आएगा, वो अप्लीकेशन देगा RCA को 23A में। यानी वैसे तो हम लोग ऑर्डिनरी आदमियों को कोर्ट कचहरी का धक्का खाना है, मगर अगर 23J वाले आप लैंडलॉर्ड हैं तो आपको अपने किराएदार को अगर हटाना है ऑन बोनाफाइड ग्राउंड, तो फिर आपको यहां ना आके सीधे RCA के पास अप्लीकेशन देनी। तो अंकित सर पढ़ेंगे, बता दीजिए।
23J, डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ चैप्टर 3A। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस चैप्टर लैंडलॉर्ड मीन्स अ लैंडलॉर्ड हु इज वन, फर्स्ट अ रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अ रिटायर्ड मेंबर ऑफ अ डिफेंस सर्विसेज, और टू अ रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ अ कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड इधर बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड अ विडो और अ डाइवोर्स्ड वाइफ, और फोर्थ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, और फिफ्थ अ सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अ मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज हु अकॉर्डिंग टू हिज सर्विस conditions is not entitled to government accommodation on his posting to a place where he owns a house or is entitled to such accommodation only on payment of penal rent on his posting to such a place।
ठीक है, ये जो widow है या disabled, ये government servant का child है ना, देखिए जो आप पढ़े हैं 23J,
a widow or a divorced wife,
और उसके बाद
physically handicapped person,
ये कोई भी फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है,
कोई भी विडो, कोई भी
विडो। एक बार फिर पढ़ दीजिए, हम लोग थोड़ा फिर से देख रहे हैं 23J।
फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर लैंडलॉर्ड मींस अ लैंडलॉर्ड हु इज फर्स्ट अ रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अ रिटायर्ड मेंबर ऑफ अ डिफेंस सर्विसेज, और टू अ रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ अ कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड ईदर बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड अ विडो और अ डाइवोर्स्ड वाइफ, और फोर्थ
विडो और डाइवोर्स वाइफ ही अलग है।
हाँ, विडो और अ डाइवोर्स्ड वाइफ।
नेक्स्ट,
फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, फोर्थ, फिफ्थ अ सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट।
बस ठीक है, तो देखिए अगर इतने लोग हैं लैंडलॉर्ड, मकान मालिक सरकारी कर्मचारी रहा है, डिफेंस सर्विसेज का है मकान मालिक, रिटायर्ड हो गया, या ऐसा है जिसको सरकारी मकान नहीं मिला है, या कोई विडो है, कोई डाइवोर्स्ड वाइफ है और डिसेबल्ड पर्सन है, वो चाहे तो बोनाफाइड ग्राउंड पे सेक्शन 12 में सूट ना फाइल करके वो RCA को 23A में अप्लीकेशन दे, और यहाँ समरी वे में उनका काम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बोनाफाइड ग्राउंड 23A में भी है, और जब अभी पढ़ाएंगे 12 सब क्लॉज 1E में भी है। तो इसमें किसका मैटर आएगा, जो 23J वाले लोग हैं लैंडलॉर्ड, जो मकान मालिक लैंडलॉर्ड 23J वाले हैं, वो लोग तो यहाँ अपना एप्लीकेशन देके काम चला लेंगे। बाकी लोगों को कहाँ से एप्लीकेशन देना होगा, उनको देना होगा सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 में। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन 12।
रिस्ट्रिक्शंस ऑन एविक्शन ऑफ टेनेंट्स सब सेक्शन 1। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, नो सूट शैल बी फाइल्ड इन सिविल कोर्ट अगेंस्ट अ टेनेंट फॉर हिज एविक्शन फ्रॉम एनी एकोमोडेशन एक्सेप्ट ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स ओनली, नेमली।
अच्छा देखिए, सिविल कोर्ट में अंडरलाइन करिए, ये सूट ऑफ एविक्शन कहाँ फाइल होगा, इट इज इन अ सिविल कोर्ट। दिस सूट ऑफ एविक्शन हैज बीन फाइल्ड इन अ सिविल कोर्ट। और जब 23A पढ़ाएंगे तो वहां लिखा होगा कि RCA को अप्लीकेशन जाएगी, दोनों में डिफरेंस है। तो अब देखिए, कह रहा है किसी और ग्राउंड पे नहीं, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में जो ग्राउंड मेंशन है फ्रॉम A to P, उसी ग्राउंड पे सिविल कोर्ट में इविक्शन सूट फाइल करिए। देखिए, याद होगा हमने जजमेंट राइटिंग में भी इजेक्टमेंट बताया, तो वही है ये। और अब एक एक करके अंकित सर ग्राउंड पढ़ रहे हैं, पढ़िए।
ए, दैट द टेनेंट हैज नीदर पेड नॉर टेंडर्ड द होल ऑफ द एरियर्स ऑफ द रेंट लीगली रिकवरेबल फ्रॉम हिम विद इन टू मंथ ऑफ द डेट ऑन विच अ नोटिस ऑफ डिमांड फॉर द एरियर्स ऑफ रेंट हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम बाय द लैंडलॉर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर।
फिर से पढ़ दीजिए।
That the tenant has neither paid nor tendered the whole of the arrears of the rent legally recoverable from him within 2 months of the date on which a notice of demand for the arrears of rent has been served on him by the landlord in the prescribed manner.
ठीक है, कह रहा है पहला कि arrears of the rent, पहला ground क्या हो गया कि हमारा किरायेदार साहब किराया नहीं दे रहा, मगर ये देखिए यहाँ ये नहीं बताया कितने महीने से नहीं दे रहा है। अपने जो यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट में सेक्शन 20 था, उसमें बताया था 4 मंथ्स एरियर, यहाँ नहीं लिखा। यहाँ बस इतना कहा, जब आपको नोटिस दी जाए कि आप एरियर जमा करिए, तो उस नोटिस के 2 महीने 2 मंथ के भीतर आपने अगर एरियर नहीं डिपॉजिट किया तो इट बिकम्स ग्राउंड फॉर इविक्शन। तो पहला ग्राउंड ऑफ इविक्शन बहुत शॉर्ट में जो लोग नोट्स बनाएंगे वो लिखेंगे एरियर्स ऑफ रेंट, यानी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट। अब भी देखते हैं।
That the tenant has, whether before or after the commencement of this act, unlawfully sublet, assigned or otherwise parted with the possession of the whole or any part of the accommodation for consideration or otherwise।
कह रहा है सब लेटिंग कर दिया, टेनेंट ने जो उसको टेनेंसी मिली थी उसने उसमें से पूरा या कुछ पोर्शन सबलेट कर दिया, यानी फर्दर किसी और को लेट कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड। तो टेनेंट हैज सबलेट द होल्डिंग विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड इट बिकम्स द ग्राउंड फॉर इविक्शन। सी बताइए।
दैट द टेनेंट और एनी पर्सन रिजाइडिंग विद हिम हैज क्रिएटेड न्यूसेंस और हैज डन एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द पर्पज ऑफ फॉर विच ही वॉज एडमिटेड टू द टेनेंसी of the accommodation or which is likely to affect adversely and substantially the interest of the landlord therein।
अच्छा, nuisance underline कर लिए। third ground कौन सा बना? nuisance, जो tenant है या जो tenant के साथ रहता है वो ऐसा nuisance कर रहा है कि landlord वगैरह को रहना और ये materially substantially affect कर रहा है, यानी अब हैबिटेबल नहीं रह गया, उसका न्यूसेंस की एक्टिविटी ऐसी है। तो थर्ड, यानी जो थर्ड ग्राउंड बना वो बना न्यूसेंस का। फोर्थ ग्राउंड देखें डी।
प्रोवाइडेड दैट द यूज बाय अ टेनेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द एकोमोडेशन एज हिज ऑफिस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द पर्पज ऑफ विच ही वॉज एडमिटेड टू द टेनेंसी।
तो देखिए, अगर केवल टेनेंट ने एक ऑफिस खोल लिया है हमने दिया था रेजिडेंशियल पर्पज से और उसने अपना एक ऑफिस उसमें खोल लिया, तो कहा दिस डज नॉट अमाउंट्स टू न्यूसेंस, इसको न्यूसेंस नहीं समझा जाएगा, केवल ऑफिस खोल लेना न्यूसेंस में नहीं आएगा, ठीक है।
डी दैट द अकोमोडेशन हैज नॉट बीन यूज्ड विदाउट रीजनेबल कॉज फॉर विच इट वॉज लेट फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन देयर ऑफ।
अच्छा, कह रहा 6 month अंडरलाइन कीजिए, नॉन यूजर टीनेंट को दिया गया था, टीनेंट ने जिस पर्पज के लिया था, मान लीजिए उसने रेजिडेंशियल पर्पज से लिया है या कमर्शियल पर्पज से लिया है, मगर 6 month हो गए उस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा है, यानी ताला बंद करके रखा हुआ है, तो नॉन यूजर फॉर 6 month अंडरलाइन कीजिए, दिस ऑल्सो बिकम ग्राउंड फॉर इविक्शन ऑफ टीनेंट, नॉन यूजर 6 महीने से यूज नहीं कर रहा, आप भी टिक करते चलिएगा, ठीक है। हाँ,
ई दैट द एकोमोडेशन लेट फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर एक्यूपेशन एज अ रेजिडेंस फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इफ ही इज द ओनर देयर ऑफ or for any person for whose benefit the accommodation is held and that the landlord or such person has no other reasonably suitable residential accommodation of his own in his occupation in the city or town concerned।
अच्छा, ठीक है, तो ये ई है ना।
हाँ,
ई देखिए वही हो गया, एक बार फिर पढ़ दीजिए, ये बोनाफाइड ग्राउंड है कि हमें खुद लैंडलॉर्ड कह रहा है कि साहब हमको या हमारे फैमिली मेंबर, देखिए यहीं पे आ गया बात फैमिली मेंबर का, कि भाई फैमिली मेंबर कौन है, तो वो हम लोगों ने सेक्शन 2 में डिफिनीशन पढ़ा था, मेरे ख्याल से ई ही था, है ना, डिफिनीशन ऑफ फैमिली मेंबर। तो लैंडलॉर्ड कह रहा मुझे या मेरे भतीजे को, मेरी अविवाहित बहन को मकान की ज़रूरत है और ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए ज़रूरत है, अतः इसको बोनाफाइड ग्राउंड पर खाली कराया जाए। तो एक बार फिर अंकित सर पढ़ रहे हैं, ये इसी का है।
That the accommodation let for residential purposes is required bona fide by the landlord for occupation as a residence for himself or for any member of his family if he is the owner thereof or for any person for whose benefit the accommodation is held and that the landlord or such person has no other reasonably suitable residential accommodation of his own in his occupation in the city or town concerned।
कह रहा है कि बोनाफाइड पर्पस के लिए हमें आवश्यकता है, बोनाफाइड पर्पस के लिए हमें अपने रहने के लिए या हमारे परिवार के लोगों को रहने के लिए जरूरत है, ई यही ग्राउंड। अब देखिए यहां पर सेक्शन 12 सब क्लास 1 का ई पढ़ रहे हैं और ये इविक्शन के ग्राउंड बता रहा है। यहाँ पर ध्यान देनी बात है कि अगर लैंडलॉर्ड कोई ऑर्डिनरी पर्सन है या ऑर्डिनरी ना कहें तो 23J वाला नहीं है, तो उसको फाइल करना पड़ेगा सिविल सूट की, साहब हमें ज़रूरत है या हमारे परिवार के सदस्यों को, और वही लैंडलॉर्ड, यहीं पे कहीं मार्क कर लीजिएगा आप लोग, वही लैंडलॉर्ड अगर 23J में आता है, डिफिनीशन में आता है, डिसेबल्ड है, विडो है, डाइवोर्स्ड वुमेन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिफेंस का मेंबर है एटसेट्रा, तो उन्हें सिविल सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, अगर उनको पर्सनल यूज के लिए खाली कराना है, दे हैव टू गिव एन एप्लीकेशन टू RCA, बार बार रटवा रहे हैं और वो 23 में अभी पढ़ाएंगे। तो यहाँ ई भी बोनाफाइड ग्राउंड है, 23A वाली यानी थर्ड ए चैप्टर भी बोनाफाइड ग्राउंड है, मगर वो कुछ विशेष लोगों के लिए है और बाकी लोगों के लिए सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 स्मॉल ई ही अप्लीकेबल होगा। अच्छा, ऑनलाइन बेटा सबको आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना?
नहीं सर,
एकदम क्लियर है ना?
यस सर।
अच्छा, तुम लोग आज बारिश हो रही है ना उधर भी?
यस सर, बहुत सुबह से ही हो रही।
अच्छा, क्यों हो रही?
क्या मालूम?
नहीं, मुझे मालूम है, कल एक गाने का संज्ञान लिया। अरे नहीं बेटा, रुमानी बातें बताएं, कल एक गाने का संज्ञान ले लिए फिर से।
यस सर, चेक।
हाँ, नहीं, उसके बाद दिए शाम को, सैया जी ने देखा मैं पानी पानी हो गई, बादशाह जी का एक गाना है ना बेटा, सुने हो? मैं पानी पानी हो गई, आज बहुत लग रहा देख लिया लोगों ने, तो सही आंसर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो बेटा होते ही रहेगा, वो तो है ही है, ज्योग्राफी में ना पढ़ने लिखने वाले बच्चे बताते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और हम लोग ऐसे जो शायराना तबीयत के क्या मुखातिब होते हैं, जो इस मौसम में अदरक की महक और दूध की चाय की इंतजार करते हैं।
कोहरा कम हो गया ना, तो देखते होंगे।
कोहरा कम हो गया, अच्छा वेरी गुड। अरे बेटा तुम गोवा हो के आए हो ना, तुमने बहुत देखा है ना, गोवा में दिखा होगा ना, अच्छा नहीं दिखा, चलो तो फिर आई टेस्ट कराओ तुम, है ना, दोनों टेस्टिंग की जरूरत होगी, आंखों की भी और सोचिए कि क्यों नहीं दिखा, ये वाइब्रेट हो रही है आवाज। चलो अब स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए आज पानी पानी हो गया है, कल उम्मीद करा जाए सूखा हो जाएगा, तो चलो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ई तक हुआ, ए बी सी डी। हाँ बेटा
सर, बोनाफाइड यूज का मतलब क्या है?
बोनाफाइड यूज का मतलब हमें अपनी, देखो बोनाफाइड जहां भी आएगा ना, हमें खुद की इस मकान की जरूरत है, हमको खुद रहना, या हमारा परिवार का फैमिली मेंबर को जरूरत है, और ये हम गुड।
सर कोई ऐसा भी प्रोविजन है कि जहाँ पे आपने बोनाफाइड डाउन पेमेंट करवाया हो, अगर आपने कुछ 5-6 महीने काम नहीं करवाया तो वापस?
हाँ अभी अभी
रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
हाँ बेटा ये जो ना 13 से लेके 20 तक है ना, अभी एक एक करके शुरू करें, क्योंकि इसमें कोई सेक्शन तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, छोड़ ही नहीं सकते, सारे सेक्शन से हर बार आया हुआ, तो अभी इसमें नीचे आएगा कि अगर आपने उसको पोजीशन में नहीं लिया, उस यूज में नहीं लिया जिसके लिए आपने खाली कराया था, तो राइट ऑफ री एंट्री है, टीनेंट वापस आ जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो ए बी सी डी ई, यानी हम लोगों ने एरियर ऑफ रेंट रटते चले, एरियर ऑफ रेंट, दूसरा सब लेटिंग था, थर्ड था न्यूसेंस, फोर्थ था यूज ही नहीं किया, 6 महीने से आप आए ही नहीं, और नेक्स्ट था फैमिली के मेंबर्स के लिए या खुद के लिए बोनाफाइड जरूरत। अब ए बी सी डी ई हो गया, एफ कमर्शियल
सेक्शन 12 एफ, दैट द एकोमोडेशन लेट फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पजेस इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड by the landlord for the purpose of continuing or starting his business or that of any of his major sons or unmarried daughter if he is the owner thereof or for any person for whose benefit the accommodation is held and that the landlord or such person has no other reasonably suitable non-residential accommodation of his own in his occupation in the city or town concerned।
ठीक है, तो देखिए एफ 12(1)(f) ये कह रहा है कि वही जो ई में था वो रेजिडेंशियल पर्पज से हमें जरूरत है, और एफ कह रहा है मुझे या मेरे मेजर बच्चे को जरूरत है बिजनेस करना है, यानी उस उसको कॉमर्शियल यूज करना है, जो रेजिडेंशियल यूज में है उसका यूज हमको कॉमर्शियल करना है, बिजनेस करना है, इसलिए बोनाफाइड हमको रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया एफ। जी बताइए।
दैट द एकोमोडेशन हैज बिकम अनसेफ और अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर कैरिंग इन और आउट रिपेयर्स विच कैन नॉट बी कैरीड आउट विदाउट द एकोमोडेशन बींग वेकेटेड।
ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट जो ग्राउंड आया कि अब ये ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए सेफ नहीं है, जर्जर अवस्था में हो गया, डिलापेटेड है, और इसको फिर से रिपेयर कराना और रिपेयरिंग का पॉसिबल नहीं है जब तक इसमें टीनेंट रह रहा है, टीनेंट जब तक हटेगा नहीं तब तक सेफ नहीं है कि इसमें रिपेयरिंग कराई जाए। ठीक है, नेक्स्ट
दैट द एकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड, ये एच है, ठीक है, दैट द एकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग और रीबिल्डिंग और मेकिंग देयर टू एनी सब्सटेंशियल एडिशंस और अल्टरेशन एंड दैट सच बिल्डिंग और रीबिल्डिंग और अल्टरेशंस कैन नॉट बी कैरीड आउट विदाउट द एकोमोडेशन बींग वैकेटेड।
ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को उस जो टिनेंटेड हाउस है उसको फिर से रीबिल्ड कराना है, कुछ अल्टरेशन कराना है, फर्दर कंस्ट्रक्शन कराना है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो टीनेंट से इविक्ट ना करा ले। और चलिए
आई नहीं हाँ आई
जी
दैट द टीनेंट हैज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बिल्ड रिक्वायर्ड वैकेंट पोजीशन ऑफ और बीन अलॉटेड एन अकोमोडेशन सुटेबल फॉर हिज रेजिडेंस।
ठीक है, टीनेंट को कहीं और उसी
एक्वायर्ड वैकेंट
पोजीशन कहीं भी उसी म्यूनिसिपल एरिया में उनको फर्दर कोई और उन्होंने मकान खरीद लिया, एक्वायर कर लिया या रेंट पे मिल गया, यानी टीनेंट को फर्दर एक और मकान मिल गया तो अब उसको इस मकान की जरूरत नहीं है, उसने एक्वायर कर लिया तो अब वो अपने मकान में जाए। तो अब टीनेंट ने चूंकि मकान ले लिया है तो वो अब अपने मकान में शिफ्ट हो और इसको वेकेट कराइए। और चलिए
जे दैट द एकोमोडेशन वॉज लेट टू द टीनेंट फॉर यूज एज अ रेजिडेंस बाई रीजन ऑफ हिज बीइंग इन द सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड दैट द टीनेंट हैज सीज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट टू बी इन सच सर्विस और एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, मान लीजिए हम अपना एक सर्वेंट रखे हैं और उसको हमने अपना आउट हाउस जो घर के बाहर का कमरा होता है उपग्रह बोलते हैं उपग्रह, मान लीजिए आउट हाउस हमने उसको दे दिया है। अब जब हम उसको हमने इसलिए दिया क्योंकि वो मकान इसलिए दिए क्योंकि वो हमारे सर्विसेज में है, अब हमने उसको नौकरी से निकाल दिया या वो खुद ही नौकरी से हट गया तो अब ये भी ग्राउंड होता है कि अब उसने जॉब छोड़ दिए या हटा दिया गया है तो अब उसको ये मकान खाली कर देना चाहिए। तो दिस इज एन ग्राउंड ऑफ इविक्शन, यानी जॉब उसका लेफ्ट हो चुका है, दिस इज एन ग्राउंड फॉर इविक्शन ऑफ टीनेंट। हाँ,
के दैट द टीनेंट हैज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कॉस्ट और परमिटेड टू कॉज सब्सटेंशियल डैमेजेस टू द एकोमोडेशन।
ठीक है, डैमेज किया है एकोमोडेशन को, टीनेंट हैज कॉस्ड लॉस आर डैमेज टू द एकोमोडेशन। और चलिए फॉल्ट ग्राउंड हो गया।
एल दैट द टीनेंट हैज गिवन रिटन नोटिस टू क्विट एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट नोटिस द लैंडलॉर्ड हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल द एकोमोडेशन और हैज टेकन एनी अदर स्टेप एज अ रिजल्ट ऑफ विच हिज इंटरेस्ट वुड सीरियसली सफर इफ ही इज नॉट पुट इन पोजिशन ऑफ दैट एकोमोडेशन।
फिर से पढ़ दीजिए।
L that the tenant has given written notice to quit and in consequence of that notice the landlord has contracted to sell the accommodation or has taken any other step as a result of which
tenant his interest has given the notice na tenant ne khud notice diya hai na
the landlord has contracted to sell the accommodation or has taken any other step as a result of which
likha tenant
has given written notice
has na हाँ. तो tenant ने एक नोटिस दिया है लैंडलॉर्ड को कि साहब हम आपका मकान अब खाली करने जा रहे हैं। इस नोटिस के बाद लैंडलॉर्ड ने उस मकान को बेचने के लिए किसी से कांटेक्ट कर लिया। अब tenant कह रहा हम नहीं खाली करेंगे तो इससे भाई हमारा एडवर्सली इफेक्ट होगा इंटरेस्ट, हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लैंडलॉर्ड कह रहा लाइबल होंगे। तो चूंकि इन्होंने खुद ही नोटिस दिया था टू क्विट और अब ये छोड़ के नहीं जा रहे हैं तो इनको इस ग्राउंड पे इविक्ट कराइए। ठीक है,
M that a tenant has without the written permission of the landlord made or permitted to be made any such construction as has materially altered the accommodation।
ठीक है, कह रहा है कि tenant ने कोई ऐसा उसमें कंस्ट्रक्शन करा दिया accommodation में जिसने बिना परमिशन के लैंडलॉर्ड से किराएदार ने कुछ ऐसा बनवा दिया जो मटेरियली अफेक्ट कर रहा उसकी वैल्यू को, दिस इज एन ग्राउंड फॉर इविक्शन। और चलिए
एन इन द केस ऑफ एकोमोडेशन विच इज ओपन लैंड दैट द लैंडलॉर्ड रिक्वायर्स इट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस ऑन इट।
ठीक है, अगर ओपन लैंड मान लीजिए बड़ा प्लॉट है, छोटा सा मकान बना है, लैंडलॉर्ड को जरूरत है कि पूरा हमको और जो ओपन लैंड है उस पर फिर फर्दर कंस्ट्रक्शन कराना है और ये टीनेंट रहेगा तो संभव नहीं है उसमें कंस्ट्रक्शन कराना, तो उसको इस ग्राउंड पे इविक्ट करा सकते हैं।
एन इन द केस ऑफ एकोमोडेशन विच इज ओपन लैंड दैट द लैंडलॉर्ड रिक्वायर्स कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन इट, ओ दैट द टीनेंट हैज विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड आल्सो टेकन पोजीशन ऑफ सच पोर्शन और पोर्शंस ऑफ एकोमोडेशन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एकोमोडेशन.
ठीक है, जितना हमने किराए के लिए उसको दिया था, मान लीजिए कमरे का उसको मकान दिया था, बाकी खाली था, उसने और भी जगहों पे अपना पोजीशन ले लिया है, तो यानी बिना परमिशन के टीनेंट ने फर्दर और पोजीशन ले लिया, तो दिस इज ग्राउंड ऑफ इविक्शन. ठीक है.
पी दैट द टीनेंट हैज बीन कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ एन ऑफेंस ऑफ यूजिंग द बिल्डिंग और अलाइंग द बिल्डिंग टू बी यूज फॉर इमोरल और इलीगल पर्पजेज.
अच्छा, टीनेंट ने कन्विक्ट हुआ है और इलीगल पर्पजेस के लिए उसको यूज कर रहा था, यानी गैम्बलिंग हाउस, प्रॉस्टिट्यूशन एटसेट्रा, इमोरल पर्पजेस, यानी उस एकोमोडेशन को इमोरल पर्पजेस के लिए यूज कर रहा था और उसके लिए कन्विक्ट भी हुआ है. तो दिस इज एन अदर आर लास्ट ग्राउंड फॉर इविक्शन ऑफ टीनेंट. इतने ही थे ना. तो देखिए, व्हाट आर द ग्राउंड टू इविक्ट अ टीनेंट फ्रॉम एकोमोडेशन. तो लैंडलॉर्ड हैज टू फाइल अ सिविल सूट टू इविक्शन ऑफ अ टीनेंट ऑन अ ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 12 सब क्लास 1 स्मॉल ए टू पी. दीज आर 14 इन नंबर्स. इफ यू हैव एग्जैक्ट मेमोरी एंड यू हैव अ कैपेसिटी टू मेमोराइज इट, तो आप ए बी सी डी करके लिखिएगा, और अगर नहीं है तो दीज ग्राउंड आर फॉलोइंग करके लिख दीजिएगा. इसमें ई याद रखिएगा हमेशा, बोनाफाइड ग्राउंड. तो हम लोगों ने ढेर सारे ग्राउंड देखे, 14 ग्राउंड्स थे, सबका एक एक आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं. एरियर्स ऑफ रेंट, न्यूसेंस, नॉन यूजर, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, डैमेजेस, परमानेंट अल्टरेशन, सबलेटिंग, आगे पीछे हो सकता है. सबलेटिंग है, फर्दर उसको जॉब सीज कर गया, जॉब के कारण ही बाय वर्च्यू ऑफ जॉब उसको दिया गया था, इमोरल पर्पजेस के लिए यूज किया, मटीरियल अल्टरेशन करा दिया, डैमेज कर दिया है, एटसेट्रा. दीज आर द ग्राउंड्स फॉर इविक्शन ऑफ टीनेंट. ये ए से लेकर पी तक दिया हुआ है. अब इसके बाद इन ग्राउंड्स के साथ थोड़ा थोड़ा सा प्रोविजो ऐड किया है कि कब कब नहीं होगा, तो वो एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं. तो आगे फिर आगे हम लोग अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं. हाँ,
सब सेक्शन 2, नो ऑर्डर फॉर द एविक्शन ऑफ अ टीनेंट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी बाइंडिंग ऑन एनी सब टीनेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 15 हु हैज गिवन नोटिस ऑफ हिज सब टीनेंसी टू द लैंडलॉर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट section unless the subtenant is made a party to the proceeding and the order for eviction is made binding on him.
कह रहा है अगर एक मकान में टीनेंट भी रह रहा है और सब टीनेंट भी है और सब टीनेंट ने सेक्शन 15 के हिसाब से नोटिस दे रखी है लैंडलॉर्ड को कि भाई हम सब टीनेंट हैं, आप जान लीजिए, और लैंडलॉर्ड की नॉलेज में है कि एक सब टीनेंट भी है, तो ऐसे केस में अगर उसको पार्टी इविक्शन सूट की नहीं बनाया गया तो ये इविक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा और वो अब सब टीनेंट की जगह टीनेंट हो जाएगा. तो ध्यान रखिए, अगर सब टीनेंट ने सेक्शन 15 की बात कर रहा है, तो एक बार सेक्शन 15 पढ़ लें, एक बार पढ़ दीजिए सेक्शन 15, जिससे कंसेप्ट क्लियर होता चले.
नोटिस ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सब टीनेंसी सब सेक्शन 1. Where after the commencement of this act any accommodation is sublet either in whole or in part by the tenant with the previous consent in writing to the landlord, the tenant or the subtenant to whom the accommodation is sublet may in the prescribed manner give notice to the landlord for the creation of the subtenancy within 1 month or the date of such subletting and notify the termination of such a subtenancy within 1 month of such termination.
तो ठीक है, कह रहा है कि अगर सब टीनेंट को, देखिए कंसेंट लिखा है, सेक्शन 15 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एकदम ध्यान रख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि एमपीएसी हम लोग पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, और इसका सेक्शन 15 कह रहा है कि अगर एक सब टीनेंट को विद द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, सब टीनेंट को टीनेंट ने रखा है विद द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, तो ऐसा सब टीनेंट अगर विद इन 1 month नोटिस दे दे लैंडलॉर्ड को कि हम आपके टीनेंट बन चुके हैं, तो फिर हमारा सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 कह रहा है, फिर अगर आप किसी टीनेंट को, मान लीजिए एक टीनेंट है और 6 कमरे का टीनेंट ने लिया था, 2 कमरा विद द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड उसने फर्दर किसी को सबलेट कर दिया, और उस सबलेटिंग में यानी ए ने बी को 6 कमरे का एक मकान दिया और बी ने उसमें से 2 कमरा सी को सबलेट कर दिया, और ये विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ ए किया उसने लैंडलॉर्ड के, और सी ने भी जो सब टीनेंट है उसने भी इस सब टीनेंसी की नोटिस दे रखी है लैंडलॉर्ड को। तो मान लीजिए इस सिचुएशन में कह रहा है कि यहां पर एक टीनेंट है बी और दूसरा है सब टीनेंट सी, ए ने ए हैज फाइल अ सूट अगेंस्ट बी ओनली फॉर इविक्शन ऑफ हिज टीनेंट बी एंड नॉट फॉर इविक्शन ऑफ हिज सब टीनेंट, उसने सी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं किया, तो कह रहा जो भी जजमेंट आएगा सब्जेक्टेड टू 15 वो सी पर बाइंडिंग नहीं होगा, केवल बी का इविक्शन होगा, सी का इविक्शन नहीं होगा, यानी सब टीनेंट पे ये जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगा जब तक उसको भी आप पार्टी ना बनाएं और उसका भी क्लियर कट इविक्शन ना कराएं। तो इसी से जुड़ा हुआ था, तो यानी हम लोग सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 के साथ प्लस 15 पढ़ सकते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
सब सेक्शन 3, नो ऑर्डर ऑफ द इविक्शन ऑफ अ टीनेंट शैल बी मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 इफ द टीनेंट मेक्स पेमेंट और डिपॉजिट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 13।
सेक्शन 13 कह रहा है कि एरियस ऑफ रेंट के ग्राउंड पे आप इविक्ट कराना चाहते हैं तो इविक्शन नहीं होगा अगर सेक्शन 13 अभी पढ़ने चल रहे हैं के मुताबिक टीनेंट ने कोर्ट में पूरा एरियर जमा करा दिया, जितना बकाया था सब जमा करा दिया, तो उसको एक बार की मोहलत मिलती है, बार बार नहीं ऐसा आप करेंगे रिकरेंट डिफॉल्ट, एक बार आपने डिफॉल्ट किया है और एरियर के मामले में आपने डिपॉजिट करा दिया, तो हम लोग सेक्शन 13 पढ़ते हैं तब 12(3) का क्लियर कट कंसेप्ट होगा। 13
सेक्शन 13 When tenant can get benefit of protection against eviction on a suit or any other proceeding being instituted by a landlord on any of the grounds referred to in section 12 or in any appeal or any other proceeding by a tenant against any decree or order for his eviction, the tenant shall within 1 month of service of writ of summon or notice of appeal or of any other proceeding or within 1 month of institution of appeal or any other proceeding by the tenant as the case may be or within such further time as the court may on an application made to it allow in this behalf deposit in the court may on an application made to it allow to in this behalf deposit in the court or pay to the landlord an amount calculated at the rate of rent at which it was paid for the period for which the tenant may have made default. इसका जो है ये subsection 2 important है. Subsection 2 कहता है in any suit or proceeding referred to in subsection 1 there is any dispute as to the amount of rent payable by the tenant, the court shall on a plea made either by landlord or tenant in that behalf which shall be taken at the earliest opportunity during such suit or proceeding fix a reasonable provisional rent in relation to the accommodation. इसको जो है घेर लीजिए reasonable provisional rent, ये पूछा जाता है प्री में।
तो ये देखिए प्री का क्वेश्चन बना कि पहले तो कह रहा था एरियर ऑफ रेंट अगर आपका है और नोटिस आने के 2 महीने के भीतर नहीं दिया तो आपका इविक्शन हो जाएगा, मगर फिर एक मोहलत दिया और कह रहा है 12 सब क्लॉज 3 में, सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 में कह रहा है कि अगर नोटिस या समन आने के 1 महीने के भीतर जितना रेंट था वो सब जमा करा देता है किराएदार टीनेंट, तो फिर उस ग्राउंड पे उसका इविक्शन नहीं होगा। ये इसमें क्लियरली कट बोला गया है कि कितने महीने के भीतर, 1 महीने। अब कह रहा है इसके आगे जो अंकित सर ने कहा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई डिस्प्यूट है कि भाई कितना किराया एरियर है, कितना बकाया है, तो फिर एक प्रोविजनल और रीजनेबल लमसम एरियर कोर्ट डिसाइड कर दे और उतना टीनेंट कोर्ट में जमा कर दे, तो इस ग्राउंड से इविक्शन पे बच जाता है। तो इसका यानी कितना जमा करेगा कौन डिसाइड करेगा, तो भाई जिस कोर्ट में सूट फाइल हुआ है वो, और उसको क्या बोलेंगे, तो कह रहा प्रोविजनल आर रीजनेबल रेंट, ये प्री में आता है कि कितना अगर डिस्प्यूट है तो कितना जमा करे, तो प्रोविजनल आर रीजनेबल रेंट, ठीक है,
रीजनेबल प्रोविजनल रेंट,
रीजनेबल प्रोविजनल रेंट ना, रीजनेबल प्रोविजनल रेंट RPR, रीजनेबल प्रोविजनल रेंट, याद रखिए शब्द मध्य प्रदेश में यही खेल है इन शब्दों का, रीजनल प्रोविजनल रेंट RPR देना होगा जो कोर्ट डिसाइड कर देगी। यानी हम लोग सेक्शन 12 फिर से देखिए, सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 स्मॉल ए एरियर ऑफ रेंट था, उसी पे आप चाहें तो 12 सब क्लॉज 1 स्मॉल ए प्लस 12 सब क्लॉज 3 प्लस 13 आप भी लिख सकते हैं, 12 सब क्लॉज 1 स्मॉल ए इसके साथ किसको पढ़ना जरूरी है, प्लस 12 सब क्लॉज 3 प्लस सेक्शन 13, 12 सब क्लॉज 1 स्मॉल ए प्लस सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 प्लस सेक्शन 13। तो बेयर एक्ट पे इस तरह लिखते चलिए, यही आपकी नोट्स भी बन सकती है, 12 सब क्लॉज 1 स्मॉल ए प्लस अपने लोग पढ़ेंगे सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 प्लस सेक्शन 13 रीजनेबल प्रोविजनल रेंट। और चलिए 12
फिर है, प्रोवाइडेड दैट नो टेनेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट अंडर दिस सबसेक्शन इफ हैविंग ऑब्टेंड सच बेनिफिट वंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन ही अगेन मेक्स अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ दैट अकोमोडेशन फॉर 3 कंजेक्यूटिव मंथ्स।
ध्यान रखिए, अगर एक बार आपने ऐसा क्षमादान पा गए कोर्ट ने कहा चलो भाई जमा कर दो रीजनेबल प्रोविजनल रेंट, तो तुमको तुम्हारा इविक्शन नहीं होगा। एक बार आप बेनिफिट पा गए फिर यही गलती कर रहे हैं, तो केवल ये एक बार के लिए एग्जेम्पशन है। तो सेक्शन 13 का एग्जेम्पशन कई बार के लिए है, एकोमोडेशन में एक बार डिफॉल्ट के लिए है, बार बार यही नहीं होगा कि कोर्ट में ही आप जमा करें, ये संभव नहीं है। ठीक है, और चलिए
फिर है सबसेक्शन 4, वेयर अ लैंडलॉर्ड हैज एक्वायर्ड any accommodation by transfer, no suit for the eviction of tenant shall be maintainable under subsection 1 on the ground specified in clause E or clause F thereof unless a period of 1 year has elapsed from the date of the acquisition.
फिर से इसको पढ़िए, बहुत important
है। Where a landlord has acquired any accommodation by transfer, no suit for the eviction of tenant shall be maintainable under subsection 1 on the ground specified in clause E or clause F thereof unless a period of 1 year has elapsed from the date of the acquisition.
1 year टिक करिए, तो यानी हम लोग 12 सब क्लास 1 स्मॉल ई और एफ के साथ अपने लोगों को प्लस 12 सब क्लास 4 पढ़ना है। ये कह रहा है कि समझ लीजिए एक लैंडलॉर्ड है, उसने एक नया लैंडलॉर्ड बना है, ए से मान लीजिए ए से बी ने परचेस कर लिया है एक मकान बाई ट्रांसफर, उसने यानी परचेस किया है, तो परचेस करने के बाद बी कह रहा है कि अब हमें मकान टीनेंट से खाली कराना है, और ऑलरेडी उसमें एक मकान में टीनेंट था, वो मकान सेल आउट कर दिया ए ने बी को, तो अब बी चाह रहा है कि मकान खाली हो जाए कि बोनाफाइड ग्राउंड पे कि हमने अब इसको खरीदा है मैं इसमें रहूंगा, तो कितने खरीदने यानी ट्रांसफर के कितने दिन तक आप कोई एप्लीकेशन नहीं दोगे, 1 ईयर। यानी परचेजर जो है वो 1 साल तक इविक्शन सूट फाइल नहीं करेगा, यूपी में 2 साल था, यहां कह रहा है 1 ईयर तक, अंडरलाइन कर लीजिए 12 सब क्लॉज 4 की, जो परचेजर है वो बोनाफाइड ग्राउंड पे ई या एफ के ग्राउंड पे 1 साल तक, 1 ईयर फ्रॉम सच एक्विजिशन हैज नो राइट टू फाइल एप्लीकेशन फॉर इविक्शन।
सबसेक्शन 5, Where an order for the eviction of a tenant is made on ground specified in clause E of subsection 1, the landlord shall not be entitled to obtain possession thereof before the expiration of period of 2 months from the date of the order.
ठीक है, जब ई ग्राउंड पे बोनाफाइड ग्राउंड पे किराएदार को खाली कराया जा रहा है तो ऑर्डर के 2 महीने तक लैंडलॉर्ड उसमें एंट्री नहीं पाएगा, 2 महीने तक का समय देना पड़ता है। ठीक है
सर।
हाँ भैया
सर, सब क्लास 4 में हाँ सब 1 ईयर तक आपको कोई एविक्शन नोटिस ही देगा, लेकिन सर नया रेंट एग्रीमेंट तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर कोई है पहले हाँ। से क्योंकि पार्टी चेंज हो गई है।
अब नया रेंट एग्रीमेंट होगा मगर चूंकि टीनेंसी में सब्जेक्टेड टू जो भी सेल आउट हुआ होगा वो तो सब्जेक्टेड टू टीनेंट हुआ होगा ना, यानी हमने मकान खरीदा है, ए ने बेचा और बी ने खरीदा, तो ये बताया गया होगा ना इसमें टीनेंट है, तो वो टीनेंसी का राइट तो ओवरराइड कर जाएगा ना, तो जो भी किराया चल रहा होगा वही किराया कंटिन्यू होगा जब तक कि टीनेंट फर्दर एग्री ना कर जाए। अगर टीनेंसी कंटिन्यू कर रही है, मान लीजिए 3 साल की टीनेंसी थी, लीज पीरियड था, उसी में बिक गया है, तब अब नया लीज नहीं होगा, जो नया लैंडलॉर्ड होगा वो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, यानी यहाँ सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, प्रीवियस लैंडलॉर्ड को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
हम लोग वैसे भी पोजीशन टू प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू नोटिस,
हाँ वो नोटिस है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़ा था ना सब्स्टिट्यूशन नोवेशन अल्टरेशन, तो यहाँ पर एक पार्टी हुई है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी एक पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वही रहेगा, सेम रहेगा।
डेट ऑफ द ऑर्डर एंड बी इन द एकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ ग्वालियर, इंदौर, जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, दुर्ग और सच अदर towns or cities specified by the state government by notification that be of unless the landlord pays the rent such amount by way of compensation as may be equal to first double the amount of the annual standard rent of the accommodation in the following cases, namely A, where the accommodation has for a period of 10 years immediately preceding the date on which ये सब जहाँ जहाँ double 10 years ये सब
तो जान ही गए बच्चे।
files are suit for possession thereof being used for business purposes or for any other purpose along with such purposes by the tenant who is being evicted. B, where during the aforesaid period of 10 years the tenant carrying on any business in the accommodation has left it and the tenant immediately succeeding the has acquired the business of his predecessor either through transfer or inheritance.
देखिए मोटा मोटा समझिए, एफ कमर्शियल ग्राउंड पे था कि हमको या हमारे परिवार के किसी सदस्य को बिजनेस करना है, यानी ये कमर्शियल बिल्डिंग की बात कर रहा, और कहा अगर बड़े शहरों में है, पहले तो वही जनरल रूल कहा कि भाई इविक्शन के बाद 2 महीने तक पजेशन नहीं लेना होगा, 2 महीने का मौका देना होगा, फिर कह रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर बड़े मेट्रो सिटीज में था, इंदौर वगैरह की बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, और ये 10 साल के लिए रेंट पे दी गई थी, मिनिमम कितने साल के लिए 10 इयर्स, और पहले ही हटाना है बोनाफाइड ग्राउंड पे ही, आप 10 साल के पहले ही चाहते हैं हटाना तो हटा दीजिए, मगर कंपनसेट करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड हैज़ टू मेक अ कंपनसेशन टू टीनेंट, बस इतना याद रखिएगा, वो कंपनसेशन कितना होगा, डबल ऑफ द एनुअल रेंट, जो भी 12 महीने किराया होगा उसका दुगना लैंडलॉर्ड को अपने टीनेंट को कंपनसेशन के रूप में देना पड़ेगा बाय वे ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि उसका गुडविल लगा होगा, उसने इन्वेस्ट किया होगा, व्यापार कर रहा है, व्यापार में केवल हमारा सिंपल सा शिफ्टिंग नहीं होता, हमारी दुकान है और आप हमें खाली करा रहे हैं तो हमारा उसमें क्या लॉस होगा, सबसे बड़ी बात है गुडविल, हम वहाँ पर जो बनाए हैं मार्केट एरिया, हम तो यहाँ कह रहा है ऐसे मामले में अगर 10 साल या उससे ज़्यादा का मामला था, पहले हटाना चाहते हैं तो आपको डबल कंपनसेट करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड हैज़ टू मेक अ कंपनसेशन डबल ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल रेंट, एनुअल रेंट का दुगना देना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा, डबल ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल रेंट, और अगर ये 10 साल या उससे ज्यादा के लिए किराए पे दिया गया था बिजनेस परपजेस के लिए, ये मैटर आ रहा है। एफ स्टैंड्स फॉर कॉमर्शियल बिल्डिंग,
13 हो चुका है।
अच्छा तो देखिए कितने बच्चे हैं, चलिए तो क्या बताएं, क्यों कुछ बताने के लिए है बेटा, है ही है, इतना ज्यादा तो बता दिए। इविक्शन के ग्राउंड पढ़ रहे हैं, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में सिविल सूट में इविक्ट कराया जाएगा फ्रॉम ए टू पी, ठीक, फिर उनके साथ थोड़ा 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 टर्म्स एंड कंडीशन लगाया जा रहा था, वो हमने पढ़ा सब सेक्शन 2 से लेकर सब सेक्शन 5 तक ना, और उसी के साथ ही साथ हम लोगों ने सेक्शन 13 भी कवर किया और 15 भी ना, 13 और 15 भी अभी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो 12, 13, 15 हो चुका है, 14 देखिए,
14
सेक्शन 14 अपने लोग पढ़ने चल रहे हैं, आप सब सेक्शन 14 ऑफ MPAC एक्ट 1961 निकालिए, ठीक है,
इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन सबलेटिंग, सब सेक्शन 1, नो टीनेंट शैल विदाउट द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड ए सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ द एकोमोडेशन हेल्ड बाय हिम एज अ टीनेंट, और बी ट्रांसफर और असाइन हिज राइट्स इन द टेनेंसी और इन एनी पार्ट देयर ऑफ। सब सेक्शन 2, नो लैंडलॉर्ड शैल क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एज प्रीमियम और पगरी और क्लेम और रिसीव एनी कंसीडरेशन व्हाटसोएवर इन कैश और इन काइंड फॉर गिविंग हिज कंसेंट टू द सबलेटिंग ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द एकोमोडेशन हेल्ड बाय द टेनेंट।
ठीक है, तो यहां देखिए 14 बड़ा सीधा सीधा कह रहा है, सबलेटिंग को मना नहीं किया गया है, सबलेटिंग को डिनाई नहीं किया जा रहा, बस कह रहा सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सबलेटिंग विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, बिना लैंडलॉर्ड से पूछे टीनेंट किसी मकान को सबलेट नहीं करेगा, अगर ऐसा करता है विदाउट परमिशन तो वो वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो सेक्शन 14 कहता है सबलेटिंग, और 15 में फिर सब टीनेंट के राइट बताया कि अगर वो नोटिस दे दे विद इन 1 month ऑफ सबलेटिंग, और अगर सबलेटिंग विद द कंसेंट है तो फिर किसी भी तरह के टीनेंट के इविक्शन से सब टीनेंट की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जनरली सब टीनेंट फिर सब टीनेंट में सब्स्टिट्यूट हो जाता है, अभी आएगा वो कहीं है प्रोविजन।
सेक्शन 15 नोटिस ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सब टीनेंसी हो गया है,
तो देखिए 12, 13, 14 और 15 ये अपने लोगों ने अभी तक कर लिया, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो इविक्शन का पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ इविक्शन, और उन बच्चों को हेलो है खास तौर से जो इस समय चाय पी रहे होंगे और कहीं गलती से उनको पकौड़ा मिल गया होगा ना बेटा, पकौड़ी या पकौड़ा मिल गया, अच्छा वो भी रोड वाली पकौड़ी जो बड़ी खर्री बनती करकरी, जो 10 दिन पुराने तेल में बार बार तल लेते जा रहा, तलते जा रहा, तलते जा रहा है, और एकदम जानलेवा हो चुकी है वो तेल, देखो भाई। तो ऐसे मामले में जो बच्चे ऐसा पकौड़ी खाए होंगे, घर वाली तो खैर ऐसी नहीं बनती है, घर वाली तो कैसी बनती है भाई, वो तो फ्रेश तेल में होगा, 1-2 दिन में, कहते हैं ना साइंटिफिक क्वेश्चन है ना, अगर कोई ऑयल पुराना होता जाए, पुराना होता जाए तो वो एक उसमें शायद एक केमिकल फॉर्मेशन, आप लोग जानते होंगे ना, रीयूज नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा
सर, ट्रांस फैट होता है जो कि
हाँ ट्रांस फैट बन जाता है ना, बार बार अगर गर्म करने से ट्रांसफैट होगा, बहुत ही ज्यादा वो इंजूरियस होता है। अच्छा क्या चाय के साथ भी ऐसा होता होगा, वही चाय पत्ती जो शर्मा की अपना रंग छोड़ देती है, तन से गर्म पानी डाला अपने लाल लाल हो, तो क्या उसी को बार बार चाय पत्ती को बार बार दुकानों पे खौलाते होंगे, तो वो भी तो मेरे ख्याल से कुछ इंजूरियस होता होगा, वो तो नहीं कुछ ट्रांसफॉर्म्स बनती है, पता नहीं। बहरहाल ट्रांस फैट तो क्लियर हो गया कि बार बार रीयूज करने के लिए ट्रांस फैट बनता है विच अकॉर्डिंग टू आवर साइंस इंजूरियस टू हेल्थ। तो अब हम लोग वो चीज पढ़ने चलें जो हमारे बेनिफिशियल होने जा रही है। तो अब हम लोग सेक्शन 16 में पढ़ने चलें, बताइए।
16 नहीं 17 पढ़ेंगे, 16 में कुछ है नहीं खास।
अच्छा 16 में कुछ नहीं, क्या है एक बार बता दो, एक बच्चा क्वेश्चन पूछा है।
सेक्शन 16 सब टीनेंट टू बी टीनेंट इन सर्टेन,
हाँ यही तो हम बता ही दिए हैं, यही तो हमने बता दिया, पढ़ दीजिए ये सही भी है। यानी 14, 15, 16 देखिए कहीं आप लोग 14, 15, 16 रिलेटेड टू सब टीनेंसी है, 14, 15, 16 रिलेटेड टू सब टीनेंसी। हमने क्या कहा था, जब टीनेंट का इविक्शन हो गया और सब टीनेंट की सेहत पे फर्क नहीं पड़ा तो सब टीनेंट प्रॉपरली क्या बन जाएगा, टीनेंट। तो देखिए पढ़ के सुनाइए।
वेयर एन ऑर्डर फॉर इविक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन इज मेड अंडर सेक्शन 12, ये हम सेक्शन 16 पढ़ रहे हैं बेटा, वेल अगेंस्ट अ टीनेंट बट नॉट अगेंस्ट अ सब टीनेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 15 एंड अ नोटिस ऑफ द सब टीनेंसी हैज बीन गिवन टू द लैंडलॉर्ड, द सब टीनेंट शैल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर बी डीम्ड टू बिकम अ टीनेंट होल्डिंग डायरेक्टली अंडर द लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एकोमोडेशन इन हिज ऑक्यूपेशन ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच द टीनेंट वुड हैव हेल्ड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड इफ द टीनेंसी हैड कंटिन्यूड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकित सर कह रहे थे, मगर मेरे हिसाब से अगर आप ज्वाइंटली पढ़ें 14, 15, 16 को, तो हम लोगों ने पढ़ा था इसको, एक जरा सा दिमाग में रखिए कि अगर एक सब टीनेंट बनाया गया है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ लैंडलॉर्ड, सब टीनेंसी हैज क्रिएटेड विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ लैंडलॉर्ड अंडर सेक्शन 14, और 15 में उस सब टीनेंट ने नोटिस दे रखी है लैंडलॉर्ड को कि भाई हम आपके सब टीनेंट हैं, और लैंडलॉर्ड ने केवल टीनेंट को इक्विट किया है, इविक्ट कराया है केवल टीनेंट को, तो 15 कह रहा था सब टीनेंट की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब चूंकि टीनेंट रहा ही नहीं तो कह रहा है सब टीनेंट का स्टेटस क्या होगा। बहुत अच्छा प्री में क्वेश्चन बन सकता है, इन केस ऑफ इविक्शन ऑफ टीनेंट व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ सब टीनेंट, तो अगर वो विद कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड है तो सच सब टीनेंट कन्वर्टेड इनटू अ टीनेंट, तो सब टीनेंट प्रमोट होके क्या बन जाएगा, टीनेंट बन जाएगा। तो 14, 15 और 16 इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को एक साथ पढ़ने पे ज्यादा समझ में आएगा, तो इन तीनों को एक साथ पढ़ें तो ये रिलेटिंग टू सब टीनेंसी है। चलिए अब 17 बताइए।
सेक्शन 17 रिकवरी ऑफ पोजीशन फॉर द ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। सब सेक्शन 1 वेयर अ लैंडलॉर्ड रिकवर्स पोजीशन ऑफ एनी अकोमोडेशन फ्रॉम द टीनेंट इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर क्लॉज ई और क्लॉज एफ ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 द लैंडलॉर्ड शैल नॉट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर री लेट द होल और एनी पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन within 2 years from the date of obtaining such possession and in granting such permission the rent controlling authority may direct the landlord to put such evicted tenant in possession of the accommodation।
बहुत अच्छा सेक्शन है, देखिए कह रहा है कि आपने बोना फाइड ग्राउंड पे सेक्शन 12 सब क्लास 1 स्मॉल ई आर एफ लैंडलॉर्ड मेक द इविक्शन ऑफ टीनेंट फॉर पर्सनल यूज, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि साहब हमको इसको किसकी जरूरत है, सर ये हमारे व्यक्तिगत जरूरत है हमारे या फैमिली मेंबर की, ठीक है, उसके बाद आप सब लेटिंग नहीं करोगे उसको, फर्दर लेटिंग नहीं करोगे। अगर फर्दर लेटिंग करना है तो कितने साल बाद करना होगा, 2 साल, 2 ईयर्स के पहले फर्दर लेटिंग नहीं करोगे, फिर तो आपने झूठ बोला है, ये तो बोनाफाइड नहीं था, ये तो मालाफाइड ग्राउंड था। तो यहां कह रहा है कि 2 साल के पहले सेक्शन 17 कह रहा है कि अब 2 साल के पहले लैंडलॉर्ड उसको फिर से फर्दर लेटिंग नहीं करेगा क्योंकि झूठ बोला है इसका मतलब, और अगर पहले करना है तो किससे पूछ के करना पड़ेगा, RCA रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से। तो हमने एक मकान खाली कराया फॉर पर्सनल यूज बोनाफाइड ग्राउंड पे, और उसके बाद हम उसको उसको उठा के किसी और को किराए पे दे दें, तो यानी तो झूठ हुआ। तो 2 साल का बार लगा दिया, कहा 2 साल के पहले आप ऐसा काम नहीं करोगे। सेक्शन 17 कहता है 2 ईयर्स रिस्ट्रिक्शन बार है, और अगर 2 साल के पहले आप फर्दर लेटिंग करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक अ परमिशन ऑफ आर सी ए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन सेक्शन 28। हाँ
सर, इसे एक बार और बता।
अच्छा, एक बार और इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि एक बोनाफाइड ग्राउंड पे एक लैंडलॉर्ड ने सेक्शन 12 सब क्लास 1 स्मॉल ई या एफ में, ई में रहने के लिए, एफ में कमर्शियल पर्पस के लिए, एक लैंडलॉर्ड ने सिविल सूट फाइल करके टीनेंट को इविक्ट कराया है कि हमें पर्सनल यूज की जरूरत है, हमें या हमारे फैमिली मेंबर को। अब आप उसको पर्सनल यूज ना करके फर्दर लेटिंग करना चाहते, किसी और को किराया देना चाहते, तो ये 2 साल तक संभव नहीं है। सेक्शन 17 कहता है 2 ईयर्स बार, 2 साल तक आप उसको बंद रखिए या खुद रहिए, 2 ईयर्स बाद ही आप इसको फर्दर लेटिंग करेंगे, क्योंकि आपने मांगा है उसको पर्सनल यूज के लिए, लेटिंग के लिए नहीं। हाँ, अगर 2 साल के भीतर भी उसको लेटिंग करना चाहते हो तो प्रीवियसली किससे पूछिए आपको, यू हैव टू टेक द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ परमिशन ऑफ आरसीए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। वही रीलेटिंग या फर्दर रिलेटिंग, हमको लगता है ये दो लोग का लगा हुआ है। आ रहा है ना,
सब पे नहीं आ रहा, ये पार्थ पे ही आ रहा है।
हाँ बेटा, वो फिर गोवा वोवा में है क्या? पार्थ, आर यू इन गोवा? हाँ बेटा, आई थिंक योर नेटवर्क कनेक्शन इज वीक देयर। अच्छा, वहाँ जंगल में यू आर द नेबर ऑफ सच तेंदुआ ऑफ दुधुआ नेशनल पार्क विच केम इन विंटर वेकेशन इन लखनऊ फॉर हिज विंटर हॉलीडेज। नाउ आई थिंक ही गो बैक ना, तेंदुआ जा चुका है, फिर से वापस चला गया, हम लोग भेज दिए आपकी ओर। जजेस भी अपना विंटर वेकेशन खत्म करके घर अपना नौकरी कर रहे हैं और तेंदुआ भी अपना वापस गया। चलो बताओ। 18
सेक्शन 18 रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर रिपेयर्स एंड रीबिल्डिंग एंड री एंट्री।
तो अगर आपने मकान खाली कराया है सेक्शन 12 सब क्लास 1 में, सब सेक्शन अभी अंकित सर बताएंगे ही, खाली कराया, एक साहब इसको मुरम्मत कराना, हैबिटेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या राइट ऑफ री एंट्री है? एकदम है, 18 में है, देखिए बताइए टीनेंट को।
सब सेक्शन 1, इन मेकिंग एनी ऑर्डर ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज जी और क्लॉज एच ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12, द कोर्ट शैल एसर्टेन फ्रॉम द टीनेंट वेदर ही इलेक्ट्स टू बी प्लेस्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ द एकोमोडेशन और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम विच ही इज टू बी इविक्टेड एंड इफ द टीनेंट सो इलेक्ट्स शैल part thereof from which he is to be evicted and if the tenant so elects shall record the fact of the election in the order and specify therein the date on or before which he shall deliver possession so as to enable the landlord to commence the work of repairs of building or rebuilding as the case may be. Subsection 2, if the tenant delivers possession on or before the date specified in the order, the landlord shall, on the completion of the work of repairs or building or rebuilding, place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof, as the case may be, within 1 month of the completion of such work.
Very good. तो देखिए, section 12 sub clause 1 G और H, जिसमें हमने कहा था कि हमने tenant को इसलिए निकाह हटाया था कि साहब मकान dilapidated condition में आ गया, habitable नहीं है, या हमको फर्दर इसमें कंस्ट्रक्शन कराना है और टीनेंट के रहते ये संभव नहीं है, तो जी और एच के ग्राउंड पे हमने टीनेंट को निकलवाया था। तो 12(1) का जी और एच के साथ 18 हमेशा ऐड करिए, और 18 कहता है कि भाई ऐसे केसेस में इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लग रहा है, और टीनेंट से कोर्ट पूछेगी कि क्या जब ये रिकंस्ट्रक्शन हो जाए तो यू वांट टू री एंट्री, तो अगर उसने इलेक्ट ऐसा कर दिया है और विद ड्यू डिलीजेंस उसने ऑर्डर के हिसाब से अपना अकोमोडेशन वैकेट कर दिया, तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, लैंडलॉर्ड फिर से बनवा लेगा, उस दिन से एक महीने के भीतर इट इज द ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड टू गिव द री एंट्री टू सच टीनेंट जो उनका एक्स टीनेंट था। तो ये ऑप्शन ऑफ री एंट्री बोलते हैं इसको, सेक्शन 18 में है, कह रहा है कि अगर मुरम्मत के लिए उससे खाली कराया गया था, उसने खाली भी कर दिया था, तो फिर जब कंप्लीट हो जाए काम, तो अगर उसने ऐसा इलेक्ट किया है टीनेंट ने, तो उसको फिर से वापस उस मकान का कब्जा एक महीने के भीतर कंस्ट्रक्शन के आपको देना पड़ेगा। दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 18, तो जीएच के साथ 18 पढ़ेंगे। हाँ,
सबसेक्शन 3, इफ आफ्टर द टीनेंट हैज डिलीवर्ड पोजेशन ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, द लैंडलॉर्ड फेल्स द कमेंस ऑफ द वर्क ऑफ रिपेयर्स और बिल्डिंग और रीबिल्डिंग विद इन वन मंथ ऑफ द स्पेसिफाइड डेट और फेल्स टू कम्प्लीट द वर्क इन अ रीजनेबल टाइम और हैविंग कम्प्लीटेड द वर्क फेल्स टू प्लेस द टीनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ द एकोमोडेशन इन अकॉर्डेंस विद द subsection 2, the court may on an application made to in this behalf by the tenant within such time as may be prescribed order the landlord to place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof or to pay to the tenant such compensation as the court thinks fit।
यही option of free entry है, ये section 24 था अपने rent control act में और UP में, और यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर ऑर्डर के बाद भी एक महीने के भीतर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं स्टार्ट किया, लैंडलॉर्ड ने खाली तो करा लिया, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन टीनेंट को फिर से पोजेशन नहीं दिया गया, तो फिर ऑर्डर करेगा कोर्ट कि आप उसको फिर से पोजेशन दीजिए, और कम और नहीं तो इन अल्टरनेट यू हैव टू पे द लैंडलॉर्ड हैज टू पे द कंपनसेशन टू द टीनेंट। तो कह रहा है जब खाली कराए हैं तो एक महीने के भीतर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दीजिए, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा टू द टीनेंट। ये सेक्शन 18 का सबसेक्शन 3 बताया गया।
फिर सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकवरी ऑफ पोजीशन इन केस ऑफ टेनेंसीज फॉर लिमिटेड पीरियड,
छोड़ दीजिए ये 19, छोड़
20 ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इन सर्टेन केसेस वेयर द लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन इज एनी कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड द अकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सच लैंडलॉर्ड और इन द केस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द फर्दरेंस ऑफ इट्स एक्टिविटीज देन नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 12 और इन एनी अदर लॉ फॉर द any other law, the court may on a suit being filed before it in this behalf by such landlord place the landlord in vacant possession of on such accommodation by evicting the tenant and every other person who may be in occupation thereof if the court is satisfied a that the tenant to whom such accommodation was let for use as a residence at a time when he was in the service or employment of a landlord has ceased to be in such service or employment or b that the tenant has acted in contravention of the terms expressed or implied under which he was authorized to occupy such accommodation or c that any other person is in unauthorized occupation of such accommodation or d that the accommodation is required bona fide by the public।
ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंस्टीट्यूशन
नहीं, ये बहुत मुझे नहीं इम्पोर्टेंट दिखा, ना अपील किया ये सेक्शन 12 इम्पोर्टेंट।
सेक्शन पूछा जा चुका है, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन इन सर्टेन केसेस, प्री में
इसे पूछ लिया को, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट 12-13 था।
और ये इसका सूट जो है कोर्ट में फाइल किया जाएगा, ये एक बार पूछा था MPHGS में।
हाँ, तो HGS बड़ा जेस है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 1920 को अभी अलग रखा है, 18 इम्पॉर्टेंट था, 17 तो बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये सब हम लोगों ने पढ़ा सबलेटिंग का 17, 18। अब हम लोग देखिए फर्दर
21 है, परमिशन टू कंस्ट्रक्ट एडिशनल स्ट्रक्चर्स, ये रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी देगी, बस इतना जान लीजिए।
एडिशनल स्ट्रक्चर अगर बनाना है, 21 देखिए, अगर एक स्ट्रक्चर है एक बार इसको पढ़ा दीजिए 21
वेयर द लैंडलॉर्ड प्रपोजेस टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट और इन और कंस्ट्रक्ट एनी एडिशनल स्ट्रक्चर ऑन एनी बिल्डिंग विच हैज बीन लेट टू अ टीनेंट एंड द टीनेंट रिफ्यूज टू अलाउ द लैंडलॉर्ड टू मेक सच इम्प्रूवमेंट और कंस्ट्रक्ट सच एडिशनल स्ट्रक्चर एंड द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन एन एप्लीकेशन made to it in this behalf by the landlord is satisfied that the landlord is ready and willing to commence the work and that such work will not cause any undue hardship to the tenant. The rent controlling authority may permit the landlord to do such work and may make such other order as it thinks fit in the circumstances of the case.
21 देखिए क्या कह रहा है कि एक मान लीजिए एक ग्राउंड फ्लोर का ही मकान एक एग्जांपल लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे टीनेंट रहता है लैंडलॉर्ड चाहता है इसका फर्स्ट फ्लोर भी बना दे सेकंड फ्लोर भी बना दे तो ऐसे केसेस में टीनेंट मना कर रहा करा नहीं आपको नहीं बनाना इससे हमारा कंफर्ट अफेक्ट होगा खटर पटर होगा दिन भर तो लैंडलॉर्ड चाहता है फर्दर कंस्ट्रक्शन कराना टीनेंट को इविक तो नहीं कर रहा है वो फर्दर कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है और ऐसा टीनेंट मना कर रहा तो ऐसे केस में क्वेश्चन आता है कि फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर टीनेंट मना कर रहा है तो लैंडलॉर्ड किससे परमिशन ले इट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम RCA तो फॉर पर्पज ऑफ फर्दर कंस्ट्रक्शन इफ टीनेंट इज ऑब्जेक्टिंग देन हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम RCA तो लैंडलॉर्ड टेक फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर कंस्ट्रक्शन सो Section 21 provides landlord has to take the permission from RCA rent control authority. तो 21 में further construction by landlord RCA के लिए दो चीजें important हाँ कितना बजा बेटा 6 बजा ना अभी
हाँ धड़ा 6:08 ठीक है 22 ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग वैकेंट बिल्डिंग साइट्स
देख लीजिए उसमें कंस्ट्रक्शन वाला होगा
ये भी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है
RCA की ही पावर अब आ रही होगी जितनी पावर है
सेक्शन 23
सर
हाँ बेटा
सर इन जनरल जब लैंडलॉर्ड अगर कभी ऐसा कुछ करते हैं एडिशनल कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन तो रियलिटी में तो कभी परमिशन देते ही नहीं
है हाँ अगर माने टीनेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है यानी एक एक तरह से ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है उस केस में होता मतलब जनरली तो क्यों बोलेगा आप बनवाना हो बनवाइए बस हमको मत निकालिए या हमारा कंफर्ट मत इसमें दो चीजें हैं कि एक तो लैंडलॉर्ड को बोलना पड़ेगा कि इसके कोई कंफर्ट में अफेक्ट नहीं आएगा उसके बाद भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में तब लिखा है क्योंकि ऐसा यूपी में तो कोई है ही नहीं ऐसा प्रोविजन तो मध्य प्रदेश में लिखा फिर किससे हमको पूछना पड़ेगा RCA हाँ RCA रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से हम लोग पूछ लें तो वो हमें अलाउ कर दे तो हम पीसफुली विदाउट एनी डिस्प्यूट हम लोग फर्दर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं हाँ
तो स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग वैकेंट बिल्डिंग साइट पढ़े इसको
छोड़ दीजिए 23
सेक्शन 23 वैकेंट पोजीशन टू लैंडलॉर्ड ये भी पढ़े
वैकेंट पोजीशन टू
लैंडलॉर्ड
क्या
नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ वेयर द इंटरेस्ट ऑफ अ टीनेंट इन एनी अकोमोडेशन इज डिटरमाइंड फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर एंड एनी डिक्री और ऑर्डर इज पास्ड बाय अ कोर्ट अंडर दिस एक्ट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच अकोमोडेशन द डिक्री और ऑर्डर शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्संस हु मे बी इन ऑक्युपेशन ऑफ द accommodation and vacant possession thereof shall be given to the landlord by evicting all such persons therefrom.
बहुत बढ़िया कह रहा है इसको ये logical है कह रहा है कि अगर eviction का एक decree pass किया court ने pass कर दिया section 12 में आपने suit file किया eviction की decree pass कर दिया तो वो खाली होने के बाद उसको possession किसको दिया जाएगा but obviously बात है landlord को मगर अगर उसमें एक सब टीनेंट रह रहा है तो सेक्शन 16 से सब्जेक्टेड टू कर दिया है कह रहा है अगर प्रॉपर सबलेटिंग है तो फिर पोजीशन लैंडलॉर्ड को न मिलके किसको प्रॉपर पोजीशन पूरे उसका मिल जाएगा उस सब टीनेंट का तो बस इतना कहा सब्जेक्टेड टू सेक्शन 16 अब चलिए
चैप्टर थर्ड ए इविक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ बोनाफाइड
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसके बिना एमपी का एग्जाम कंप्लीट नहीं होता। फिर से एक बार, बहुत से बच्चे बाद में भी आए होंगे, कुछ लेफ्ट हो जाते हैं, तो फिर से समझ लीजिए। सेक्शन 12 हम लोग पढ़े थे, वो केस था ऑर्डिनरी केस था, ए से पी तक ग्राउंड था। कोई लैंडलॉर्ड जो 23J वाला लैंडलॉर्ड नहीं है, एक ऑर्डिनरी लैंडलॉर्ड है, विच डज नॉट कम अंडर द डिफिनीशन ऑफ लैंडलॉर्ड स्पेशल लैंडलॉर्ड एज प्रोवाइडेड इन 23J। तो एक ऑर्डिनरी जो 23J वाला नहीं है, उसको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। ही हैज टू फाइल अ सिविल सूट फॉर द पर्पज ऑफ इविक्शन ऑफ हिज टीनेंट। मगर अगर वही 23J वाला है, 23J वाला कौन होगा? वो लैंडलॉर्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिफेंस का था, रिटायर हो गया है एटसेट्रा, या डिसेबल्ड है, या विडो वगैरह है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि अगर वो अपने रहने के लिए बोनाफाइड पर्पस के लिए चाहते हैं, तो फिर सिविल कोर्ट में सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। दे हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन, आई रिपीट, दे हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन टू RCA फॉर वेकेशन ऑफ सच बिल्डिंग। आसान काम हो गया, सीधे RCA को आप एप्लीकेशन देके उसको खाली करा लीजिए। तो इसके प्रोविजंस हैं, इसमें पूछा बहुत बार जाता है कि RCA के ऑर्डर का रिवीजन कहाँ होगा, सीधे हाई कोर्ट में, मेरे ख्याल से हर साल पूछा जाता है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ने चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेजिड्यू बचेगा 23 वाला आज कर लेंगे, जो रेजिड्यू बचेगा वो कल फिनिश कर देंगे। हाँ,
सेक्शन 23A स्पेशल प्रोविजन फॉर इविक्शन ऑफ टीनेंट ऑन ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट।
अच्छा, ये जरूर देखिए, थर्ड ए चैप्टर कब ऐड किया गया, लिखा तो नहीं कहीं?
नहीं, हमारे में तो नहीं है।
देख लीजिएगा ये थर्ड ए चैप्टर कब ऐड किया गया, अगर हो तो कहीं देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ,
नॉट विद
1983। आप लोग भी चेक करिएगा कि ये जो चैप्टर थर्ड ए है स्पेशल प्रोविजन, ये कब आया, तो बच्चे ऐसा बता रहे हैं 1983। तो देख लीजिएगा भाई डेट उट क्वेश्चन, हर साल चूंकि एग्जाम होता है एमपी में, तो कुछ तो नया क्वेश्चन वो ढूंढेंगे ही। हाँ चलिए,
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स और कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, अ लैंडलॉर्ड में सबमिट एन एप्लीकेशन साइंड एंड वेरीफाइड इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन रूल्स 14 and 15 ऑफ ऑर्डर 6 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एज इफ इट वर अ प्लेन टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टीनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजेशन ऑफ द एकोमोडेशन नेमली ए।
कह रहा है बहुत अच्छा, देखिए इसको 23A फिर देखिए, कह रहा है कि लैंडलॉर्ड अपने पोजेशन को रिस्टोर कराने के लिए, अगर वो स्पेशल लैंडलॉर्ड है 23J वाला, तो केवल एक अप्लीकेशन लिख के दे जो प्लेंट की तरह बनेगी, और अप्लीकेशन कहाँ फाइल करेगा, RCA के अंतर्गत, यानी इसको सूट नहीं फाइल करना है, इसको अप्लीकेशन देना है केवल RCA को इन इन ग्राउंड्स पे, जो ग्राउंड अंकित सर बताने चल रहे हैं कि साहब हमको हमारा मकान दे दीजिए, हमें जरूरत है, बताइए ग्राउंड्स।
ए दैट द एकोमोडेशन लेट फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर ऑक्यूपेशन एज रेजिडेंस फॉर हिमसेल्फ और ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और फॉर एनी पर्सन फॉर हूज बेनिफिट द एकोमोडेशन इज हेल्ड एंड दैट द लैंडलॉर्ड और सच पर्सन हैज नो अदर रीजनेबली सुटेबल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑफ हिज ओन इन हिज ऑक्यूपेशन इन द सिटी और टाउन्स कंसर्न।
ठीक है, पहला तो भाई हमको या हमारे परिवार को चाहिए, हमारे पास कोई और मकान इस टाउन में नहीं है, तो हमें आप खाली करा के दीजिए। ठीक है।
बी that the accommodation let for non-residential purposes required bona fide by the landlord for the purpose of continuing or starting his business or that of any of his major sons or unmarried daughter if he is the owner thereof or for any person for whose benefit the accommodation is held and that the landlord और सच पर्सन हैज नो अदर रीजनेबली सुटेबल नॉन रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑफ हिज ओन इन हिज ऑक्यूपेशन इन द सिटी और टाउन कंसर्न।
तो कह रहा है कि दूसरा, पहला तो था रेजिडेंशियल पर्पज से हमें जरूरत है, दूसरा हमारा लड़का मेजर हो गया है या अनमेरिड डॉटर है उसको जरूरत है फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस, इस एकोमोडेशन की जरूरत है। तो दूसरा ग्राउंड होगा फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, और बाकी सब कुछ कॉमन है। हाँ, सी
प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन हु इज अ लैंडलॉर्ड हैज एक्वायर्ड एनी एकोमोडेशन और एनी इंटरेस्ट देयर इन बाय ट्रांसफर, नो एप्लीकेशन फॉर एविक्शन of tenant of such accommodation shall be maintainable at the instance of such person unless a period of 1 year has elapsed from the date of such acquisition।
तो याद होगा आप लोग को, अभी भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, सेक्शन 17 या किसी में था कि एक साल आपने अगर इस मकान को खरीदा है तो एक साल तक, खरीदने के एक साल के पहले आप खाली कराने का कोई भी एप्लीकेशन या सूट फाइल नहीं करेंगे। ये किस सेक्शन में था आप सब बता सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया है। किसमें था बेटा? 17 में ही था ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक साल अगर आपने खरीदा है तो एक साल तक किराएदार को आप खाली नहीं कराइए, एक साल बाद ही सूट आएगी या एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
23 कैपिटल बी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू इश्यू समन्स इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 23 कैपिटल ए।
ठीक है, आरसीए समन भेजेगा टीनेंट को। ठीक है, और चलिए,
ये सेकंड शेड्यूल में है। हाँ, दिया हुआ, ठीक
वो
है?
तो फॉर्मेट होगा वो हम लोग को नहीं जानना।
23 सी, टीनेंट नॉट इंटाइटल्ड टू कंटेस्ट एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस।
बहुत बढ़िया, देखिए ये इतना स्पेशल प्रोविजन है जिसमें टीनेंट कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकता है, यानी इस एप्लीकेशन का अपोज केवल कुछ ही ग्राउंड पे करेगा। बताइए कौन कौन से ग्राउंड है।
सबसेक्शन 1, द टेनेंट ऑन हुम द समन्स इज सर्वड इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल शैल नॉट कंटेस्ट द प्रेयर फॉर एविक्शन फ्रॉम द एकोमोडेशन अनलेस ही फाइल्स विद इन 15 डेज from the date of the service of the summons an application supported by an affidavit stating the grounds on which he seeks to contest the application for eviction and obtains leave from the rent controlling authority as herein after provided and in default of his appearance in pursuance of the summons or in default of his obtaining such leave or if such leave is refused the statement made by the landlord in the application for eviction shall be deemed to be admitted by the tenant the rent controlling authority shall in such a case pass an order of eviction of the tenant from the accommodation।
इसको देखिए समझने इसको कोशिश किया जाए, स्पेशल प्रोविजन है ना, तो कह रहा है टीनेंट को ऐसे मामले में कंटेस्ट का राइट नहीं होगा, विरोध करने का। हाँ, अगर वो चाहता है कंटेस्ट करना तो 15 डेज, अंडरलाइन करिए 15 दिन, जिस दिन उसको सम्मन मिला उसके 15 दिन के भीतर आरसीए के पास जाए और ग्राउंड बताए कि किस ग्राउंड पे हार्डशिप है, क्या है, वो क्यों कंटेस्ट करना चाहता है, क्यों खाली नहीं करना चाहता। मगर इसके लिए समय कितना दिया गया है? कुल 15 दिन, जिस दिन सम्मन मिला है टीनेंट को उसके 15 डेज के भीतर अगर आप नहीं गए तो मान लिया जाएगा यू हैव एडमिटेड द समन और उसके बाद आपको खाली करना पड़ेगा। तो सी बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि इसमें राइट टू कंटेस्ट ही नहीं है अपोजिट पार्टी को, और अगर वो कंटेस्ट करना चाहता है टीनेंट तो 15 दिन के भीतर आरसीए से ग्राउंड्स ऑफ कंटेस्ट डिपॉजिट करा दे। और चलिए,
प्रोवाइडेड दैट द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मे फॉर सफिशियंट कॉज शोन बाय द टीनेंट एक्सक्यूज द डिले ऑफ द टीनेंट इन एंटरिंग अपीयरेंस और इन अप्लाइंग फॉर लीव टू डिफेंड द एप्लीकेशन फॉर इविक्शन एंड वेयर एक्स पार्टी ऑर्डर हैज पास्ड मे सेट इट असाइड।
ठीक है, छोड़ दीजिए।
सबसेक्शन 2, द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन गिव टू द टीनेंट इफ नेसेसरी leave to contest the application if the application supported by an affidavit filed by the tenant discloses such fact as would disentitle the landlord from obtaining an order for the recovery of possession of the accommodation ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23 कैपिटल ए।
चलिए, इसको इतना नहीं जानने की जरूरत है, बस इतना जानिए कि टीनेंट के पास कंटेस्ट करने का राइट नहीं है। अगर चाहता है तो 15 दिन के भीतर आरसीए को एप्लीकेशन दे। और चलो
23 कैपिटल डी, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी और ग्रांट ऑफ लीव टू टीनेंट टू कंटेस्ट। सब सेक्शन 1 नहीं इंपॉर्टेंट है। वेयर लीव इज ग्रांटेड टू द टीनेंट टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन, द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल कमेंस द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन एज अर्ली एज प्रैक्टिकेबल एंड डिसाइड द सेम एज फार एज मे बी विद इन 6 months ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लीव टू द टीनेंट टू कंटेस्ट एप्लीकेशन विद इन 6 months। ये आज
करिए, इस मैटर को कितने दिन में सॉल्व कर देगा आरसीए? 6 महीने के भीतर। पूरा फैक्चुअल है, पढ़ा रहे हैं, बेयर एक्ट को ही हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। बस कोशिश ये है कि शायद वो लोग, आप लोग खुद करने में शायद आलस, निग्लिजेंस कहते हैं ना, मेंसरिया के 4 डिविजन्स होते हैं। मेंसरिया पढ़ाएंगे आप लोग को तो बताएंगे, इंटेंशन, नॉलेज, उसके बाद रेकलेसनेस और फिर निग्लिजेंस। तो यहाँ 4th डिग्री में मेंसरिया हो जाती है आप लोग की, चलो पढ़ लेंगे कभी, निग्लिजेंस वाली। उसी को हम बस ड्यू डिलीजेंस में लाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम बेयर एक्ट को पढ़ के और आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। तो इसमें कह रहा था कंटेस्ट करना हो तो 15 दिन में, और ये सारा मैटर 6 महीने के भीतर आरसीए सॉल्व कर देगा। लिमिटेशन पीरियड 6 महीना उनको दिया गया। ठीक है, और चलिए
23 कैपिटल ई, रिवीजन बाय हाई कोर्ट।
ये तो मतलब एकदम आंख मूंद के, मैंने आंख खोल के भी आप पढ़ सकते हैं कि 23 ई, इस आरसीए का जो ऑर्डर होगा उसकी रिवीजन सीधे हाई कोर्ट जाएगी। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाती ढेर सारी, अभी हम पढ़ाएंगे आपको, मगर आरसीए का जो इस में ऑर्डर है 23D में, उसका रिवीजन होगा हाई कोर्ट। देखिए, पढ़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट।
नॉट नोटविदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 31 और 32, नो अपील शैल लाइव फ्रॉम एनी ऑर्डर पास बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर दिस चैप्टर। द हाई कोर्ट में at any time suo motu or on an application of any person aggrieved for the purpose of satisfying itself as to the legality, propriety or correctness of any order passed by or as the regularity of the proceedings of the rent controlling authority, call for and examine the record of the case pending before or disposed of by such authority and may pass such order in the division in reference thereto as it thinks fit and save as otherwise provided by this section. In disposal of any division under this section, the High Court shall, as far as may be, exercise the same powers and follow the same procedure as it does for disposal of a division under section 115.
ध्यान रखिए, बस इतना याद रखना है,
नहीं याद अब ये रखना है, provided that no powers of division at the instance of person aggrieved shall be exercised unless an application is presented within 90 days of the date of the order sought to be revised.
पूरा एकदम पेपर आउट कर दे रहे हैं अंकित सर, है ना? यानी ये जो जैसे मदारी नहीं बंदर उंदर नचाता, वैसे हम भी पढ़ाते हैं ना उसी तरह, आउट 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 पेपर आउट, यानी इस
ज्यादा आउट आउट ना
कर, हाँ, नहीं तो क्या, हाँ 23A, 23A का जो डी में ऑर्डर आया है ये फाइनल है, इसकी अपील भी नहीं होगी। ई कह रहा है अपील नहीं होगी, केवल एक संभावना है, हाई कोर्ट में रिवीजन करिए, वो भी ऑर्डर के 90 डेज। एक लाइन में बस लिखना है, इसी पे बहुत क्वेश्चन आता है, 90 डेज में इस ऑर्डर की केवल रिवीजन होगी। ये हम लोग स्पेशल प्रोविजन पढ़ रहे हैं 23A वाला, यानी चैप्टर 3A वाला। ठीक है, और बताइए। और
23 कैपिटल एफ, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, द स्टे ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इविक्शन पास बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी और बाय द हाई कोर्ट शैल नॉट इंश्योर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ मोर देन 6 months।
ठीक है, अगर हाई कोर्ट स्टे करती है रिवीजन में तो 6 महीने ज्यादा का स्टे नहीं होगा।
कई बार आ चुका है ये भी 6 months से।
तो अगर हाई कोर्ट रिवीजन अप्लाई एक्सेप्ट करती है, रिवीजन एप्लीकेशन, और उसके बाद स्टे कर देती है ऑर्डर ऑफ आरसीए, आरसीए के ऑर्डर को स्टे कर देती है, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के ऑर्डर को, तो ऐसे मामले में अगर स्टे लगाएगी हाई कोर्ट तो मैक्सिमम 6 मंथ का स्टे होगा, उससे ज्यादा का स्टे नहीं होगा।
23 कैपिटल जी रिकवरी ऑफ पोजीशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री सबसेक्शन 1 वेयर एन ऑर्डर फॉर द एविक्शन ऑफ अ टेनेंट इज मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 23 कैपिटल ए द लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन पोजीशन देयर ऑफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 2 months
तो वही पहले
फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर
2 महीना जब ऑर्डर होगा तो 2 महीने का समय दीजिए टेनेंट को अपना सामान वान पैक करके जाने का, तो 2 महीने पहले आप री एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है।
बाकी पूरा वही चीज है वेयर एन ऑर्डर इवेक्शन
वो देख लीजिएगा आप लोग
2 months और वो लश्कर और मुरार और इंदौर उज्जैन रतलाम डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ
वो तो रेंट अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग होगा 10 साल के लिए रेंट आउट हुआ है तो पुराना जो हम लोग अभी पढ़े थे ना पूरा कि अगर वो 10 साल के पहले आप खाली वाली कराना चाहते हैं तो दुगना डबल ऑफ एनुअल रेंट के डबल आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसका सब सेक्शन 3 देख लिया जाए वेयर लैंडलॉर्ड रिकवर्स पोजीशन ऑफ एनी एकोमोडेशन फ्रॉम द टेनेंट इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और सेक्शन 23 कैपिटल ए द लैंडलॉर्ड shall not accept with the permission of the rent controlling authority obtain in the prescribed manner re-let the whole or any part of the accommodation within 2 years
ये भी पुराना from the date of the obtaining सारा पुराना ही हम लोग अभी पढ़े हैं कि आप 2 साल के पहले आप कह रहे हो हमको जरूरत है साहब खाली करा रहे हो उसके बाद फिर उसको नए किरायेदार को दे रहे हो ये पॉसिबल नहीं है कितने साल तक 2 साल तक जब तक आप RCA से इसकी प्रीवियस परमिशन ले मेरे ख्याल से 1919 कुछ था 18 रहा होगा देख लीजिएगा आप लोग ये पुराना ही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कंप्लीट हो गया ना 23 वाला
हाँ। अब एक और है गया सबसेक्शन 4 वेयर अ लैंडलॉर्ड रिकवर्स पोजीशन ऑफ एनी अकोमोडेशन एज अफोरसेड एंड द अकोमोडेशन इज नॉट ऑक्युपाइड बाय द लैंडलॉर्ड इफ ही इज द ओनर देयर ऑफ और बाय द पर्सन फॉर हूज बेनिफिट द अकोमोडेशन इज हेल्ड विद इन 2 मंथ ऑफ
ऑब्टेनिंग पुराना है सब पुराना ही तो है
और द अकोमोडेशन
2 महीने के भीतर अगर आपने खाली करा के उसका पोजीशन नहीं लिया तो फिर से ऑप्शन ऑफ क्या आ जाती है री एंट्री।
अब है इसके बाद है 23 IH छोड़ दीजिएगा आई फॉल्स एंड फ्राइवलस एप्लीकेशन एटसेट्रा ए लैंडलॉर्ड मेकिंग अ फॉल्स और फ्राइवलस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 23 कैपिटल ए और अ टेनेंट सीकिंग ईदर परमिशन टू डिफेंड द एप्लीकेशन और एडजर्न ऑन फॉल्स और फ्राइवलस और वेक्सेशियस ग्राउंड मे बी सेडल्ड विद हैवी कंपनसेटरी कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ रेंट ऑफ द एकोमोडेशन निशान लगा लीजिए 6 मंथ रेंट ऑफ द एकोमोडेशन एट अ टाइम एज द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मे फिक्स।
कह रहा है कि अगर आई है ना अगर गलत सलत एप्लीकेशन आपको जरूरत नहीं थी आपने गलत एप्लीकेशन फाइल किया तो ऐसे में टीनेंट को 6 महीने का कंपनसेशन दिलाया जाएगा आरसीए द्वारा फ्रीविलेज ग्राउंड पे अगर एप्लीकेशन डाली गई, ठीक है।
बाकी 23 J हम लोग पढ़ी चुके हैं हो गया ये कंप्लीट हो गया।
अच्छा देखिए 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट था हाई कोर्ट में रिवीजन होगा ये पूरा हम लोगों ने एक एक चीज शिद्दत से पढ़ाया है वी होप कि आप सब इसको एक बार और रिवीजन करके इस नोट्स को बना लीजिए। आज हम लोगों ने इविक्शन का पूरा पॉइंट कवर किया है कल अब आरसीए अपॉइंटमेंट जो मिसलिनियस प्रोविजन है 51 तक वो रिमेनिंग पोर्शन कल हम लोग कर देंगे। आज का यहीं आप लोग फिनिश करके अपना अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और जो बचा हुआ है वो कल करेंगे। फिर हम लोग फर्दर मंडे से हम लोग 4:30 बजे IPC स्टार्ट करेंगे। अब रही बात एक मैंने बीच में भावावेश में आके लिमिटेशन एक्ट की भी बात शायद कर लिए थे वो भाव में आ गए थे हम ज़्यादा तो होता है आदमी जब ज़्यादा भाव में इमोशनल हो जाता है तो बड़ा चढ़ चढ़ के बातें करने लगता है। तो खैर अब बात आई गई है तो लिमिटेशन एक्ट भी मैंने कहा था मर चुकी अब हमें IPC पढ़ाना ही है मंडे से। हम बीच में कभी भी लिमिटेशन एक्ट का अभी हम नोट्स भी तैयार करवा रहे हैं बीच में कभी भी 2 या 3 दिन का क्योंकि हमें लग रहा था वो 1 दिन का है हमने खुद पढ़ा तो मुझे लगा कि कम से कम 2 या 3 दिन, कम से कम 2 दिन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बीच में कभी भी बिफोर मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन आई मेक माई कमिटमेंट विद माई सेल्फ, सलमान की तरह अपना कमिटमेंट मैं कभी भूलता नहीं हूं। तो उसको लिमिटेशन को बीच में कभी भी होल्ड करके 2 दिन के लिए, जब हमारा सब कुछ तैयार हो जाएगा तो हम उसको लिमिटेशन को बीच में पढ़ा देंगे आप लोग को। तो चलिए हम लोग कल का अभी एक और चैप्टर बाकी है, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मंडे से अपना आईपीसी स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।